Elhamdülillah, elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala habibihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd, fa'uz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. En yemsaskum karhum fakat masal kavma karhum misluh. Ve tilkel eyyamu nudavilva beynel nas. Ve liyalemullahu allazine amuru. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالبصر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کو کچھ زخم لگا تو بے شک اس قوم کو بھی ایسے ہی زخم لگ چکا ہے اور ہم یہ دن لوگوں میں پھیرتے ہیں اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو گواہ بنائیں اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتے. بہت بڑا فرق جو ہے وہ کسی دوسری زبان کا ترجمہ کرنا ہے. جب بھی آپ تراجم پر بحث دیکھیں گے تو کہیں کوئی دعویٰ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بعین ہی ترجمہ کیا گیا ہے. جو جس زبان یعنی جو جس کی مادری زبان ہے اس کی جو گہرائی ہے یا اپنا جو وہ مقصد کہنا چاہتا ہے اس کے مطابق جو الفاظ ہیں یہ جس کی زبان ہے یعنی اہل زبان ہی اس بات کی وہ گہرائی اس درجے کی سمجھ سکتے. جب اتنی محنت کی جائے کہ وہ زبان جو ہے اسی طرح آپ کے مزاج کا حصہ ہو جائے جیسے اہل زبان کی ہے, پھر جب ترجمہ کیا جاتا ہے ایک زبان کا دوسری زبان میں آپ کو کوئی دعویٰ یہ نہیں ملے گا کہ بعین ہی ترجمہ ہے, قریب ترین ترجمہ ہوگا. قرآن کریم کے ترجمے کو جب دیکھتے ہیں دنیا کی معلوم زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے. ہم یہاں اردو بولتے ہیں تو یہاں اردو میں ترجمہ ہے, چونکہ لکھا پڑھا جاتا ہے اردو کو تو اس میں ترجمہ موجود ہے. لیکن وہ جو آیا کریمہ ہے اس کا ترجمہ بعین ہی ہو نہیں سکتا. پھر اللہ کریم کا کلام ہے, اس کی جو وسعت ہے وہ کہاں سمو سکتی ہے. اس لیے ان آیات کریمہ کا کی جو سمجھ ہے اور ایک اس کی جو ادراک کی کیفیت اور حال ہے اللہ کریم عربی زبان میں بندے کو اس درجے کی سمجھ دے اور اتنی عربی زبان پر عبور نصیب ہو کہ یہ جو آیات کریمہ کی گہرائیاں ہیں یہ سمجھ آ سکیں. اللہ کا کلام ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, وہ آسان فرمائے اسے سمجھنا. یہ جو آیا کریمہ مجھے تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے اس کے شان نزول میں غزوہ احد بیان فرمایا گیا ہے اور یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم کو کچھ زخم لگا تو بے شک اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے. یعنی جو نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے غزوہ احد میں اسی طرح کا نقصان جو ہے پہلے اہل مکہ جو ہیں مشرکین مکہ جو ہیں غزوہ بدر میں وہ برداشت کر چکے ہیں یا انہیں ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ فرمایا اور مختلف پہلو اور آراء آئیں, بعض آراء تھیں کہ مدینہ منورہ میں رہ کر حفاظت کی جائے, بعض آراء تھیں کہ میدان میں نکلا جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نوجوان اور گفتگو اور جوش جذبہ تو وہ گفتگو زیادہ حاوی کی گئی, تو آپ نے پھر اس گفتگو کے تحت جب زرہ پہن کر آپ نکلے تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بزرگ تھے بڑے تھے उन्हें ये बात समझ आई कि आपने पहली राय जो है वो पसंद फरमाई थी और हमने और जोश में जो आ रहा हैं ये बाहर की दी गई। तो अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका फैसला है और इस तजावज़ की माफ़ी अता फरमा दें कि बाहर की राय दी गई, आप पसंद फरमा रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ दूसरे पहलू से। तो आपने फरमाया जब अल्लाह का नबी ज़रा पहन लेता है तो फिर वापस उतारता नहीं, मुकाबला होगा। बदर में 70 के करीब जो मुशरिकीन है वो जहन्नम वासिल भी हुए और 70 के लगभग जो हैं लोग कैद भी हुए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग, हस्तियाँ जिन्हें ये शर्फ नसीब हुआ कि ईमान नसीब हुआ, वो भी बदर के कैदियों में से थे। और यहाँ उहद पहाड़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्त पर रखा, लेकिन जहाँ पुश्त पर रखा वहाँ एक दरा भी उस पहाड़ में से आता है और एक छोटी सी पहाड़ी है उस बड़े पहाड़ के दामन में जिसके गिर्द वो दरा घूमता है, क्योंकि बारिशों में पानी जो है उसके बहने से और एक साल सदियों और अरसे के साथ जो ज़मीन में एक तब्दीली रूनमा होती रहती है। तो बदर पहाड़ उहद पहाड़ जो है उसके दामन में एक छोटा पहाड़ भी है, लेकिन उसके साथ ऐसे पानी के बहाव का भी एक निज़ाम है और एक दरा है। आपने वहाँ 50 सहाबा जो हैं उन्हें मुकरर फरमाया कि यहाँ रह कर आप जो इस्लामी लश्कर है उसकी पुश्त से हिफाजत करें, क्योंकि ख़तरा है कि पीछे से हमला ना हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नतीजा कुछ भी हो आपने ताहुक्मे सानी ये दरा नहीं छोड़ना। तो सफ आरा हुई फौजें, मुकाबले हुए, जंग हुई और आखिर जो हैं कुफार जो हैं वो भागना शुरू हो गए। इन भागते कुफार को देखकर जो दरे पर लोग मुतय्यन थे वो भी वहाँ से उतरे। यहाँ एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये है कि बाज़ जो लोग तहरीर करते हैं वो ये कहते हैं कि वो जो दरे पर मौजूद थे वो इसलिए नीचे उतर आए कि जो माल गनीमत है उसे लूटा जाए। लफ्ज़ लूट लिखा हुआ होता है और ज़बान पर असर वक़्त का बहुत पड़ता है। अब जब वो लफ्ज़ लूट लिखा गया है तो उससे मुराद ये नहीं थी कि वो छीना जा रहा है, जो कुछ छोड़ा जा रहा है, जो कुछ गिर रहा है, क्योंकि जो भाग गया उस तक पहुंचना तो पुजा जो मैदान कारदार में रह गए उसे अब लूटने के मानों में कैसे कह सकेंगे। एक बात। दूसरी बात, जब ये मंसूब किया जाता है लूटा जाए तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि माल गनीमत थोड़ा है या जायद, सारा जमा होता है। जब सारा जमा होता है तो फिर तकसीम फरमाया जाता था हिस्सों में, और माल गनीमत के हिस्सों में तकसीम पर कुरान करीम ने इरशाद फरमाया। ये किसी मौलाना की बात नहीं है, एक दीनी हुक्म। तो वो जो दरे से उतरे हैं उनके साथ लफ्ज़ ये लूटना जब लिखा जाता है तो उसका माना बदल जाता है। ये ज़रूर हुआ है कि ता हुक्म सानी जो फरमान था उस पर अमल नहीं हुआ, ये ज़रूर हुआ। उस पर अमल होता तो ग़ज़वे उहद में इतना नुकसान न होता, क्योंकि फिर जब पलट कर मुशरिकीन ने हमला किया तो 70 के लगभग सहाबा जो हैं वो शहीद हुए और ज़ख्मी तो तकरीबन सारा लश्कर जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़ख्म हर एक ने खाया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आप शदीद ज़ख्मी हुए, बल्कि इस दर्जे के ज़ख्मी हुए कि एक दफ़ा ये आवाज़ जो है वो बुलंद कर दी गई कि आप शहीद हो गए हैं। अब तो इतना नुकसान हुआ, लेकिन वो जो जज्बा है लड़ने का वो बात और। आप किसी जज्बे के तहत जब गलती करते हैं उस गलती का जो है मुआवजा तो फिर वो गले पड़ जाता है। क्योंकि गलती सबब की है और सबब अल्लाह करीम ने दुनिया में पसंद फरमाया। जब सबब नहीं रहता तो फिर मामला और होता है, या गलत असबाब जो हैं उनको या गलत तरीका अख्तियार करने से नुकसान होता है। तो दरा खाली छोड़ा गया तो उस वक़्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे। आप सामने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे, बल्कि उन्हीं की कमान में ये सारा जो है लश्कर लाया गया था। तो उन्होंने ये अल्फाज मिलते हैं कि उन्होंने कहा कि लगता है आज भी हमें शिकस्त हो गई बदर की तरह। तो उस वक़्त हज़रत खालिद ने जो बात की वो ये थी कि अभी नहीं, अभी मामला फैसले पर नहीं पहुँचे, क्योंकि वो दरे को देख रहे थे और दरे पर हरकत थी। पलट कर उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। जब पीछे से हमला किया, सामनी फौज वापस पलट आई, तो वो जो तरतीब थी, नज़्म था, तादाद तो वैसे पूरी नहीं थी, समान हर्ब वैसे पूरा नहीं था, तो वो जो एक तरतीब थी जब वो सफ़ें उखड़ गईं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर जब ये आवाज़ बुलंद हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से, तो फिर सहाबा ने लड़ने का जो है, कितने ही सहाबा उन्होंने तलवार फेंक दी कि अब शहीद होते हैं तो कर दो भाई, हमने लड़ कर क्या करना है। एक अजीब कैफियत होगी। तो अल्लाह करीम ने ये इरशाद फरमाया है कि अगर तुमको कुछ ज़ख़म लगा तो बेशक उसको उनको भी ऐसा ही ज़ख़म लग चुका है। अब यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, हम अपने मुआशरे में, अपने मुल्कों में, अपने नज़्म में अक्सर जो बात सुनते हैं वो यही शिकायत सुनते हैं कि ये नुकसान हो गया, ये दुख पहुँच गया, ये नहीं हो सकता, वैसा क्यों नहीं किया गया। तो इस निस्बत को, इन बातों को जब दुश्मन की निस्बत देखते हैं तो उनको भी तकलीफ़ होती है। वो तमाम तकालीफ से गुजर कर फिर मुसलमानों पर हमला कर रहे होते हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और अगर बंदे मोमिन इसी बात पर रहेगा तो मुकाबला कैसे करे। इसी आया करीमा में अगला हिस्सा जो है वो बड़ा मजबूत जवाब भी है। और दूसरी बात जो मैं बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ, और हज़रत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बेशुमार दफ़ा, मुतअद्दद दफ़ा ने बेशुमार दफ़ा ये इरशाद फरमाया कि दूसरी जो तारीख में ज़्यादती की जाती है वो ये कहा जाता है कि ग़ज़वे उहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई, और शिकस्त के असबाब लिखे जाते हैं, नुकसान के असबाब नहीं कहते, शिकस्त के असबाब कहते। हालांकि फरमाते हैं कि ये शवाहिद मौजूद हैं इन्हीं तारीख की तहरीरों में कि फिर जो अहल मक्का हैं उन्हें मदीना मुनव्वरा छोड़कर दूर तक जो है वो जाना पड़ा, और बड़े दूर तक जो है वो मुसलमानों ने जो उनकी पीछे जो आए, फिर क़याम फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान उहद। अब जो शिकस्त खा जाए वो कैसे क़याम करता है, और जो फातह हो उसको मफतुआ कैसे अपने इलाके से दूर छोड़ कर आता है, ये समझने से कासर। यहाँ दो और नुकात जो हैं उनकी ज़रूरत होती है देखने की, ऐसी गुफ्तगू या ऐसे नताइज पर पहुँचने से पहले। एक, जो कुछ कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्फाज क्या। ये जो हम आपस की गुफ्तगू करते हैं ना, जब वहाँ आप गज़वात की बात करते हैं तो गुफ्तगू अमूमी नहीं है। कुरान करीम क्या बयान फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर ऐसी गुफ्तगू न की जाए जैसे तुम आपस में गुफ्तगू करते हो। तो क्या इस आया करीमा से ये नहीं समझ आती हमें कि जब आप गज़वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत बात कर रहे हो तो क्या वहाँ बिलअमूम बातों का या अंदाज का या अल्फाज का इतलाक करोगे। तो ये वो बातें हैं जहाँ तहकीक भी चाहिए और एहतियात भी चाहिए। तो अल्लाह जल्ला शानु ने इरशाद फरमाया कि अगर दुख या जख्म या सदमा पहुंचाए तो उस कौम को भी पहले ऐसे सदमा पहुंच चुका है। यानी दुनिया जो है, इस दुनिया में दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख भी है। सर्दी है तो गर्मी है, गर्मी है तो सर्दी है, कोई खुश है तो फिर एक वक्त नजर आएगा कि वो रो रहा होगा किसी दुख में, वो सेहत है तो बीमारी है। तो ये एक जिंदगी की मुख्तलिफ पहलू हैं, और जो हकीकत है इस हयात की और इस जिंदगी के, ये हकायक हैं कि ये सारा नज़्म इसके साथ चलता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं व तिल्कल अय्याम नुदाविल व बैन अन्नास, और हम ये दिन लोगों में फेरते हैं। अब कोई हंस रहा है, खुशी में है, कामयाबी में है, उसने कुछ हासिल किया है जिससे उसको मुसर्रत है, क्या वो अल्लाह का शुक्र कर रहा है? क्या वो ये समझ रहा है कि ये अता अल्लाह की है, या वो उसे अपने अकल और खिद की जो है वो कमाल समझ रहा है? जैसे कारून ने कहा था कि अल्लाह की अता क्या, तो ये मेरे अपना इल्म और अपना अकल है जो मैंने इतनी दौलत कमाई, तो अकल जमीन से धसने में तो फिर काम ना आया। इसी तरह जब जिंदगी करवट लेती है तो जहाँ फायदा हो रहा होता है वहाँ नुकसान हो जाता है, तो जब नुकसान हो तो फिर क्या टांगे विसार कर वो एतराज़ कर रहा है कि ये मेरा नुकसान क्यों हुआ है, या उस पर सब्र कर रहा है, अपनी जो अपने जो अमल की कमजोरी है उसको देख परख रहा है कि मैं तदबीर बेहतर करूँ, कमज़ोर तदबीर से नुकसान है। और अगर वो ये समझता है कि ये जो कुछ है अल्लाह की तरफ से है, तो फिर तो मामला ही बदल जाता है। सबब ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना अमल का, वहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है। नतीजा क्या है, अल्लाह करीम के दस्ते कुदरत में है, हमारे जिम्मे पूरा अमल करना है, और फिर दीन या दीनी जो अहकामात हैं उनका पहुँचना या नाफज होना, या मुसलमान मुल्क या इस्लामी रियासत, जब आप इन तमाम पहलुओं को देखेंगे तो बाज़ जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, दुआ किया जाए, तरबियत की जाए। बिल्कुल, दुआ इबादत है और शर्फ़ हम कलामी है अल्लाह जल्ला शानू की ज़ात से, तो आम बात नहीं। इसी तरह दुनिया सबब से, उसमें असबाब की जगह सिर्फ दुआ को रख दिया जाए तो बात पूरी नहीं होती, इसलिए कि अगर सिर्फ दुआ और ज़ाहरी तरबियत ही सारा कुछ होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में बैठकर जलवा अफरोज होकर दुआ फरमाते, आप बनफ़ से नफीस अरिश बदर में अल्लाह के हजूर सरबसजूद न होकर दुआ फरमा रहे होते। 313 सहाबा क्या है, 8 तलवारें क्या है, खजूरों का शुमार क्या है, लिबास पूरा नहीं, जरा बंद लिबास तो कुजा, कपड़ा पूरा नहीं, बमुश्किल 70 ढांपे गए, लेकिन जो है तमाम सबब पूरे करके दुनिया के, फिर अल्लाह के हुजूर आपने दुआ फर अर्ज की। इसी तरह आप बदर में देखें, आप खुद, आपको खुद जख्म लगे, और अजीब सूरत है मोहतरम, इसी जब उहद के मैदान में आप देखते हैं ना तो अजीब अजीब मिसालें मिलती हैं। दुनिया को हम समझते हैं ना जी कामयाबी है, या जो दुनिया का जाना नाकामी है, अजीब सूरत हाल मिलती है। एक साहबी रसूल जख्मी हुए, और ऐसा जख्म लगा कि जो उनकी आंख जो है वो निकली, लटक गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे, हुजूर हाजिर हुए, आपने अपने हाथ मुबारक से आंख वापस अपनी जगह पर रखी। न सिर्फ वो आंख अपनी जगह पर गई, बल्कि वो नॉर्मल सेहतमंद होकर वापस लड़ाई में दाखिल हो। और एक सहाबी रसूल जो हैं वो जख्मों से चूर हैं, उन्होंने आपके हुजूर हाजिरी जो है वो दरख्वास्त की बाकी साहब से। आपके हुजूर पहुंचाया गया तो उनकी जो तमन्ना थी वो ये थी कि आपके जो पाँव मुबारक है वहाँ सर रख के जान देना, जो है आखिरी सांस मेरी जो है वो आपके पाँव मुबारक पर है। अल्लाह ने उनकी शहादत वैसे कबूल की। देखो ना, एक हयात का पहलू है और एक दुनिया से पर्दा करने का पहलू है। हर दो सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई है और ताल्लुक है, اور ہر دو صورت میں مقصود اللہ کی رضا اور اس کی ذات, دونوں میں سالے موجود ہیں نا, زندگی کی طرف بھی ہے اور اس دنیا سے پردہ جو کرنا ہے وہ نسبت بھی شہید زندہ ہے, لیکن دنیا کی عمومی زندگی سے تو مستقل ہو گیا نا, تو زندگی تو برزخ کی ہوئی, تو برزخ کی حیات میں پھر جو اس کی حیات ہے اللہ کریم نے اس کی حیات کو خصوصی ارشاد کر, لیکن جب وہ شہادت سے پہلے کا معاملہ جو آتا ہے وہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا, ایسے موت کی طرف چلنا, ہر لمحہ گزرنا موت کی طرف, تو معاملات دنیا اور زندگی کی حیات میں بھی اللہ کے حبیب سے رشتہ اور تعمیر اللہ کے حبیب, اور دنیا سے جب پردہ فرمانے کی بات آتی ہے موت کی طرف کا کوئی سفر آتا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں, اور یہ مشہور واقعات میں سے ہیں, اکثر آپ نے سنے بھی ہوں گے, لیکن دونوں کی نسبت آپ دیکھیے گا. اللہ کریم یہ حالات کا پھر جو فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں بین الناس فرمایا, صاحب ایمان ہی کو نہیں مخاطب فرمایا, تو سمجھ آتی ہے یہ دنیا کا اصول ہے کہ حالات بدلتے رہیں گے, جب طاقت ہوگی تو امتحان طاقت میں ہے, جب کمزوری یا نحیفی ہوگی تو امتحان اس کمزوری میں ہے کہ کیا دونوں صورتوں میں رجوع اللہ ہے یا نہیں ہے, یا تو شکر کی کیفیت ہوگی یا صبر کی کیفیت ہوگی, ان دو کا ہی اطلاق ہوگا نا جی, جس طرح کی بھی صورتحال پیش آ جائے, یا شکر کی صورتحال ہوگی تو یا صبر کی شکر حال ہوگی, تو شاکر و صابر یہ دو کیفیات ہونا ہے اور انہی کے تحت دونوں پہلو داخل ہوتے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان 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 حالات کو وہ لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں, اور ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بڑے آسودہ زندگی بسر کرتے ہیں, ہمارے سامنے ہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی زندگی یا حالات ان کے بڑے تنگ ہو جاتے ہیں, جو لوگوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ پر ہیں, اور اس تھوڑی سی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو زکوٰۃ اور صدقات پر تھے پھر وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی دیکھا ہے کہ جو گھر انتہائی کمزور ہیں لوگوں کے سہاروں پر چلتے تھے اب لوگ ان کے سہارے ڈھونڈ رہے ہوتے, جن کے سہارے یا جن کے نام ہر مسئلے کے حل کے ساتھ جڑے ہوتے تھے انہیں پوچھتا کوئی نہیں. یہ آپ اپنے معاشرے میں اپنی عزیز داری میں جہاں آپ رہتے ہیں جہاں آپ کی زندگی بسر ہوتی ہے آپ غور فرمائیں, یہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اس آیا کریمہ کی جو عملی صورت ہے آپ کو اپنے گرد نظر آئے گی, تو جب گرد نظر آ رہی ہے تو کیا ہم اسی زندگی کا حصہ نہیں, جب گردش ایام ہم پر اس کا اثر واقع ہوتا ہے تو پھر ہم چیخیں یا اللہ کی طرف دیکھیں, تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور اس سخت موقع پر ارشاد فرما رہا ہے, اور آپ جب آپ واقعات پڑھتے ہیں نا غزوہ احد کے تو اس وقت بہت بڑا دھوکہ منافقین نے بھی دیا تھا, اور اچھی خاصی تعداد مدینہ منورہ سے نکل کر عین میدان میں پہنچتے ہوئے واپس پلٹ گئے کہ ہماری تو یہ رائے تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر لڑا جائے, ہماری مانی نہیں گئی, ہم تو یہاں ذبح ہونے نہیں آئے, اور مقصد یہ تھا کہ جو اسلامی لشکر ہے اسے کمزور کیا جائے, لوگ بردل ہو جائیں کمزور پڑ جائیں اور پلٹیں پیچھے تاکہ شکست جو ہے وہ یقینی ہو جائے, تو اتنی سختی میں اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا کہ تمام نقصان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادتیں اللہ نے قبول فرمائیں, لیکن مدینہ تو نبی سلامت رہا, دین کی جو تعمیل دین کے جو امور ہیں اور جو ترویج ہے وہ اللہ کریم نے جاری و ساری رکھی, کتنی مشکل کی بات. تو آج جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ زندگی کا حصہ ہے, اس میں دیکھیں اور سمجھیں उस पहलू को इख्तियार किया जाए जो इंदल्लाह पसंदीदा है, और इंदल्लाह जो हिस्सा पसंदीदा है वो आपको कुरान और सुन्नत के ताबे आएगा, उसी के तहत वो हिस्से आप तक पहुंचे हैं, और यही कुरान और सुन्नत आप तक पहुंचाने का सबब है और अजमा कि वो हिस्से जो अल्लाह ने पसंद फरमाए। وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, और ताकि अल्लाह ईमान वालों को मुतमय्यिज़ यानी जान लें और तुम में से बाज़ को शहीद बनाए। देखें गवाही, शहादत पर बड़ी गुफ्तगू होती है, जहाँ भी अदल का कोई पहलू सामने आए ना तो शहादत पर बड़ी गुफ्तगू होती है। हमारी भी अदालतें हैं जिनमें शहादत तलब की जाती है, शहादत पर बहस की जाती है, और हालात हम देखें कि जब शहादतें बिक रही हों तो फिर उस माशरे में जो कुछ तनाज़ली पैदा हो रही होती है और बढ़ रही होती है वो भी हम खुद शाहिद हैं। और हर शय की शहादत जो है वो क्या है, गवाह होना, उसका सबूत देना। और यहाँ जिस शहीद की बात हो रही है वो सिर्फ इकरार नहीं कर रहा ज़बान से, सिर्फ तस्दीक जो है वो अपने कलब से नहीं कर रहा, बल्कि अगले दर्जे पर जाता हुआ इस इकरार और तस्दीक के साथ अपनी जान निछावर कर रहा है अल्लाह जल्ला शानहु की वादनियत की शहादत पर। अब ये हालात की तब्दीली, ये बदलाव, मैदान कारजार, तलवारों की छनकार, ये सारा कुछ तो फिर इसमें क्या है, तो शहादत भी तो इसी में है। तो जब तलवारें उठ जाती हैं तो फिर क्या फरमान है कि तलवार के साए में ही जन्नत है, और जब तलवारें उठ जाएं तो वहां से हटने को रब्बे कायनात ने पसंद नहीं फरमाया। सिर्फ हरबा ना हो, मकसूद ना हो, हटने वाले के लिए कुरान करीम ने वईद फरमाई, फिर जो होगा देखा जाएगा, बच गए तो गाजी, काम आए तो शहीद। तो अल्लाह जल्ला शानू फरमाते हैं कि ईमान वालों का जान लेना, यानी ये जो हालात का फिरना है, ये जो इस तंगी का वकू पजीर होना है, इसमें साहिब ईमान की ये एक उसके लिए इम्तिहान है। हर तरह के हालात हमें पेश आते हैं, तो मैंने अर्ज किया कि हर तरह के हालात में जो ईमानी पहलू है कि रुजू इल्लाह क्या है, यही बुनियाद है और यही इम्तिहान में बंदे मोमिन की मेराज है। वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़ालिमों को दोस्त नहीं रखते। अब इस सारे फेर में हक और बातिल भी तो है ना, जो लोग बातिल पर हैं वो भी इसी दुनिया में रह रहे हैं, और जब सख्ती पेश आती है तो फिर उसके हालात हल के ढूंढते हैं, और जब वो सख्ती से निकलते हैं तो फिर शिर्क में और मुकाबले में खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ईमान वाले हैं कि तकलीफ में भी अपने अल्लाह को पुकारते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, और जब तकलीफ दूर होती है तो बजाय मुकाबले में आने के उसी के हुज़ूर सजदे शुक्र कर रहे हैं। फ़िरऔन की कौम पर मुख्तलिफ किस्म के जो हैं अजाब नाज़िल हुए, और कुरान करीम बयान फरमाता है कि जब अल्लाह का अजाब उन पर आता तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते कि दुआ करें कि यह अजाब टल जाए, ये अजाब टल गया तो हम ईमान ले आए। कुरान फरमाता है कि जब अजाब गुजर जाता तो फिर उसी तरह कर जाते। तो जब बात आती है जान लेने की तो वो गफूर रहीम तो जानता है, अजल से जानता है उसकी ज़ात अली, लेकिन जिसे इस इम्तिहान में पैदा फरमाया गया और जिसका इम्तिहान है वो किस रास्ते का मुसाफर हो रहा है, जिसे उसने इख्तियार दिया है कि तू जो रास्ता इख्तियार करना चाहता है उस रास्ते का मुसाफर हो। तो जब मुसाफर कदम ब कदम चलेगा तो ही रास्ता भी तय होगा, तो ही रास्ते के तायुन में भी बात आएगी कि वो किस तरफ का कदम उठा रहा है। तो ये जो हालात का फेर है, तो फरमाया जा रहा है कि ये जो हालात का फेर है ये तुम्हारा इम्तिहान है, ताकि तुम्हें जान लिया जाए कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या अख्तियार है। जान लेने से मुराद यहां ये नहीं है कि अल्लाह करीम ने जानना है, उसकी तो ज़ात अलीम। तुम अपने अमल से जो अल्लाह करीम जानता है उसकी तस्दीक करोगे। ये कल नहीं कह सकोगे कि रोज़े माशर, कि जैसे कुरान करीम की आयात है कि बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाया कि कल ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह तू हमारे पास अपना नबी और रसूल भेजता जो हमें तेरे अहकाम पहुंचाता और हम शौक से उस पर अमल करते, तूने अपना नबी और रसूल भेजा नहीं तो हम कैसे जान पाते। ये क़यामत के दिन खड़े होकर ये कह रहे हैं, और जब अब हक भेजा है तो अब मुकाबल खड़े हैं और जिद और अनाद में लगे हैं। तो यहां भी बात जो है वो यही है कि इन हालात में वो जो अपने हिस्से का काम ये सबूत है कि किस राह के मुसाफिर होते हो, तो बाकी नतायज तो उस इंतखाब के साथ फिर वारद होना शुरू हो जाते हैं ना, उस तरह के नतायज आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो जुल्म कर रहा है, अब यहां देखें ना दो पहलू, एक जमात है जो अल्लाह के नाम पर लड़ी और 70 के लगभग शुहदा हैं, और बाद शुहदा ऐसे हैं जिनके वजूदों को मसला किया, उनके अजाव जवारों काटे गए चबाए गए, और दूसरी तरफ जो है पहली जो मार का हक और बातल का है, वहां पर जो उनके 70 बड़े बड़े नाम जो हैं वो खाक आलूद हुए, उन्हें तो वो तो छोड़कर भाग गए थे, उनको दफन भी मुसलमानों ने किया था। दूसरे दिन बदर के मैदान में जिस जगह खाई में दफन किया गया था इनको मुशरिकीन मक्का को, तो उस खाई पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि जो अल्लाह का वादा है वो सच पाया है या नहीं, यानी जो कुछ तुम्हें बता रहे थे अंजाम बद से डरा रहे थे, इंजार फ़राइज़ नबूवत में से है, तो अब उस बात को सच देखा है या नहीं। अब अबू जहल जो है उसके साथ वो सारे बाकी जो तादाद 70 की है लगभग वो सारे उसी गड़े में थे। अल्लाह अल्लाह। अब जिन्होंने जुल्म किया, वल्लाह ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को दोस्त नहीं रखते, अल्लाह के महबूब वो नहीं है। अल्लाह को हिब्बु लफा महबूब है माफ फरमान। अब जो जुल्म कर रहा है वो माफी की तरफ तो आ नहीं रहा, वो तो मुकाबला आ रहा, तो बात बदल गई। तो यहां रद्द है कि अल्लाह जालमों से प्यार नहीं करता, जालमों को नहीं चाहता। कोई पहलू ऐसा नहीं है कि वहां अल्लाह के हुजूर उनकी बेहतरी होगी, क्योंकि वो जुल्म कर रहे हैं, वो अल्लाह उनको दोस्त नहीं रखता। तो अब इस सारी आया करीमा के सामने मैंने कुछ हिस्सा जो है वो आपको शान नज़ूल का, कुछ हिस्सा वाक़ियाती, और कुछ हिस्सा जो असरार और रमूज हैं हमारी ज़रूरत आज के हालात के वर्ष किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस आया करीमा ये जो दो ढाई तीन लाइनों में है, ढाई लाइनों में है, अगर इसी आया करीमा को पढ़ें, इसका तर्जमा देखें और फिर हम अपना आप देखें, तो फिर बात बड़ी वाजह हो जाती है। अल्लाह करीम हक को समझना और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।